लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है लंपेदुसा की प्रेरित यात्रा की सालगिरह पर संत पापा फ्रांसिस का संत मार्था के प्रार्थनालय में मिस्सा बलिदान के दौरान दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने शरणार्थियों और प्रवासियों के संबंध में लंपेदुसा की अपनी प्रथम प्रेरित यात्रा की सातवीं सालगिरह पर वैटिकन के अपने निवास संत मार्था में यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए गरीबों और प्रवासियों में ईश्वर के चेहरे को खोजने का संदेश दिया।
Il salmo responsoriale oggi ci invita a una ricerca costante del volto del Signore. Ricercate sempre il volto del Signore, cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto.
आज का स्तोत्र भजन हमें ईश्वरीय चेहरे की खोज हेतु आह्वान करता है। ईश्वर की शक्ति पर निर्भर रहो, उनके दर्शनों के लिए लालायित रहो। यह मनोभाव मानव के रूप में हमारे जीवन की आधारशिला है, क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य जीवनदाता ईश्वर से मिलन है। ईश्वर के दर्शन हेतु लालायित रहना हमारे लिए वह आश्वासन है जो दुनिया में हमारी जीवन यात्रा को सफल बनाएगी। यह प्रतिज्ञात देश की ओर निर्गमन करना है जो हमारे लिए स्वर्ग का राज्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर के दर्शन करना है। नबी होशैया के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ इसराइलियों के खोने की बात कहता है। उनकी नजरें प्रतिज्ञात देश से विचलित हो गई थी और वे अधर्म की मरुभूमि में भटक रहे थे। उनका हृदय अपने ईश्वर से दूर चला गया था, क्योंकि वे अपने में समृद्ध, धनी और संपन्न हो गए थे। इन सारी चीजों ने उनके हृदय को अन्याय और झूठी बातों से भर दिया था।
Si tratta di un peccato da cui anche noi cristiani di oggi non siamo immuni.
यह पाप की स्थिति को बयां करती है, जिससे आज आधुनिक परिस्थिति में ख्रिस्तीय भी अपने में अछूते नहीं हैं। आराम की संस्कृति जो हमें केवल अपने आप तक ही सीमित कर देती है, जहां हम दूसरों की रुदन के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, यह हमारे जीवन को साबुन के बुलबुले की तरह बना देती जो अपने में सुंदर है किंतु मिथ्या है। यह हमारे जीवन को व्यर्थ और क्षणभंगुर बना देता, क्योंकि हम दूसरों के प्रति उदासीन बने रहते हैं और हमारी यह उदासीनता वैश्विक होती जाती है। इस वैश्विकता में हम अपने को उदासीनता के कटघरे में गिरा पाते हैं। हम दूसरों के दुखों के आदि हो गए हैं जो हमें प्रभावित नहीं करती है। हम उनकी कोई परवाह नहीं करते, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं होता है। नबी होशैया के शब्द आज हमें अपने में परिवर्तन लाने का आह्वान करते हैं, जहां हम अपनी आँखों को ईश्वर की ओर उन्मुख करते हुए उनके चेहरे को देखने हेतु बुलाए जाते हैं। नबी कहते हैं, तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लुनोगे, अपनी प्रतिभूमि जोतो क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता ना बरसाए।
La ricerca del volto di Dio è motivata da un anelito di incontro con il Signore.
ईश्वरीय मुखमंडल को देखना हमारे लिए ईश्वर से व्यक्तिगत रूप में मिलने की चाह को निरूपित करता है, जहां हम उनके अतुल्य प्रेम और मुक्तिदायी शक्ति का अनुभव करते हैं। आज के सुसमाचार में हम 12 शिष्यों को व्यक्तिगत रूप में यीशु ख्रिस्त से मिलता हुआ पाते हैं, जो मानव बनकर धरती में आए। वे उन्हें उनकी आंखों में देखते हुए नाम लेकर बुलाते हैं और शिष्य यीशु से आंखें मिलाते, उनकी बातों को सुनते और उनके आश्चर्यजनक कार्यों को देखते हैं। ईश्वर से व्यक्तिगत मुलाकात हमारे लिए कृपा और मुक्ति का एक समय होता है और हम उनमें एक प्रेरिताई को देखते हैं। यीशु उन्हें कहते हैं, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम जो 3री सदी के शिष्य हैं, यीशु ख्रिस्त से ऐसी व्यक्तिगत मुलाकात हमारे लिए भी संभव है। हम जो उनके मुखमंडल की खोज करते हैं, हम उन्हें गरीबों के चेहरे में, बीमारों, परित्यक्त और परदेशियों में पा सकते हैं। यह मुलाकात हमारे लिए कृपा और मुक्ति का स्रोत बनती है, क्योंकि यह हमें शिष्यों की भांति प्रेरिताई कार्यों को करने हेतु निर्देशित करती है। यीशु से हमारी मुलाकात और प्रेरिताई अलग अलग नहीं है। संत पापा ने कहा कि आज मैं लंपेदूसा की अपनी प्रेरितिक यात्रा की 7वीं सालगिरह मनाता हूँ। ईश वचनों के प्रकाश में मैं पुनः अपने उन वचनों को दोहराना चाहता हूँ जिसे मैंने पिछले साल फरवरी के महीने में कहा था, भय से मुक्त हो।
L'incontro con l'altro è anche incontro con Cristo.
दूसरों से मिलना हमारे लिए ईश्वर से मिलना है। यीशु स्वयं इस बात को कहते हैं, वे हमारे घर के द्वार को भूखे, प्यासे, नंगे, बीमारों, कैदियों के रूप में खटखटाते हैं और हमसे मिलने आते और हमसे मदद की मांग करते हैं। संत पापा ने कहा,
Se avessimo ancora qualche dubbio, ecco la sua parola chiara. In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.
यदि हम अब भी संदेह करते हों, तो हमारे लिए ये उनके वचन हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। जो कुछ भी किया, चाहे अच्छा या बुरा, यह चेतावनी आज हमारे लिए मुख्य विषय है। यह मूलभूत तथ्य हम जो कुछ भी करें उसमें अपने अंतःकरण की जांच हेतु मदद करे। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि मैं लीबिया, नजरबंद शिविरों, प्रवासियों जो दुराचार और हिंसा के शिकार होते, आशा की यात्राओं, बचाव कार्य में संलग्न दल और धक्का मुक्की के बारे में सोचता हूँ, जो कुछ तुमने किया मेरे लिए किया। संत पापा फ्रांसिस ने 7 साल पहले प्रवासियों से की गई अपनी मुलाकात के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि लंपेदूसा के द्वीप में बहुतों ने अपने जीवन की घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन उनके ऊपर होने वाली घटनाएं हमारे बीच पूरी तरह उभर कर नहीं आती हैं। हमारे लिए कुछ एक बातों का जिक्र किया जाता है जो खबर में छन कर प्रकाशित होता है। हम सभी जानते हैं कि युद्ध अपने में बुरा है, लेकिन हम इसमें फंसे अवरोध के शिकार लोगों की नरकीय स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वे लोग आशा में समुद्र पार कर आए हैं। संत पापा ने अपने प्रवचन के अंत में माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हुए कहा,
La Vergine Maria, ma solatio, mi grazio, ci aiuti a scoprire il volto del suo figlio in tutti i fratelli e le sorelle costretti a fuggire dalla loro terra per tante ingiustizie da cui è ancora afflitto il nostro mondo.
माता मरियम जो प्रवासियों की सांत्वना या सहारा हैं, हमें अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के चेहरे को हमारे भाई बहनों में खोजने हेतु मदद करें, जो अपने सरजमी से पलायन करने हेतु बाध्य हैं, क्योंकि विश्व आज भी बहुत सारे अन्यायों से ग्रसित है।
भाइयों को जो किया मेरे लिए किया, किया मेरे लिए किया। प्रभु राज के हकदार हो, प्रभु राज में आओ।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन लूर्द की यात्रा करेंगे और 15 अगस्त को माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण महोत्सव का समारोही मिस्सा का अनुष्ठान करेंगे। राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा के आयोजकों के निमंत्रण पर कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन 15 अगस्त को माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करने के लिए फ्रांस के लूर्द तीर्थालय की यात्रा करेंगे। कोरोना वायरस फैलने से पहले कार्डिनल को तीर्थ यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया था और सोमवार को उन्होंने लूर्द जाने की पुष्टि की। महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के कारण इस वर्ष की राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा बीमार लोगों की उपस्थिति के बिना ही होगी। हालांकि उन्हें इस घटना के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए ऑनलाइन मिस्सा में सहभागी होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उधर जिनेवा अंतर धार्मिक मंच GIF ने संयुक्त राष्ट्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि COVID-19 महामारी और जलवायु संकट के बीच राष्ट्र मानव अधिकारों की रक्षा करे। बयान में कहा गया कि COVID-19 महामारी और मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन एक अन्यायपूर्ण और पारिस्थितिक रूप से अस्थिर आर्थिक प्रणाली में निहित है। इसका बुरा प्रभाव लोगों के मानव अधिकारों पर पड़ा है। जिनेवा में 30 जून से 17 जुलाई तक संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक के 44वें सत्र के दौरान GIF की ओर से वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च WCC द्वारा प्रस्तुत संयुक्त वक्तव्य में यह आह्वान किया गया। जिनेवा अंतर धार्मिक मंच में अन्य लोगों में शामिल हैं डोमिनिकन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, लुथरन वर्ल्ड फेडरेशन और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। बयान GEF COVID-19 संकट और जलवायु संकट के बीच की कड़ी को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि दोनों लोगों के स्वास्थ्य और SDG सतत विकास लक्ष्यों के मानव अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। बयान में कहा गया कि एक तरफ तो COVID-19 महामारी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को संक्रमित किया है और इसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों हजारों मौतें हुई हैं, तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन से कुपोषण, श्वसन संबंधी बीमारियां, वेक्टर जनित बीमारियां और जैव विविधता पर इसके विनाशकारी प्रभावों के माध्यम से नए महामारियों के जोखिम बढ़ने का अनुमान है। GIF COVID-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकारों के बीच चौराहे की मान्यता और निगरानी एवं सभी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण के मानव अधिकार को मान्यता देने की अपील करता है। यह बयान कोविड-19 के खिलाफ उपायों को लागू करने और सबसे गरीब देशों के ऋण को रद्द करने के साथ साथ उनके मानव अधिकारों के दायित्व को पूरा करने में राज्यों का समर्थन देने के लिए वैश्विक कर सुधार को रद्द करने के साथ मानव अधिकारों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने के लिए भी कहता है। और कोविड-19 के लिए बने वाटिकन आयोग ने मंगलवार को वाटिकन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसकी थीम थी भविष्य की तैयारी, कोविड-19 के समय में शांति का निर्माण। वक्ताओं ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की कई खामियों को प्रकाश में लाया है। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि हथियारों पर खर्च करने वाले धन को सहायता एवं स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च किए जाने वाले धन में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बजट में 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च 1.9 ट्रिलियन डॉलर था। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटिकन विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल पीटर टर्कसन के अनुसार आज के समय में एकजुटता का वैश्वीकरण करने की आवश्यकता है। अभूतपूर्व धन सैन्य खर्चों के लिए आवंटित किया जा रहा है। बीमार, हाशिए पर रहने वाले गरीब और संघर्षों के शिकार वर्तमान संकट से प्रभावित हैं। कार्डिनल टर्कसन ने कहा, अब तक स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक संकट न केवल अमीर और गरीब के बीच बल्कि शांति, समृद्धि और पर्यावरण न्याय के क्षेत्रों एवं संघर्ष, अभाव और पारिस्थितिकी विचलन के क्षेत्रों के बीच खाई को चौड़ा कर रहे हैं। शांति के बिना कोई उपचार नहीं हो सकता। कार्डिनल टर्कसन के अनुसार संघर्षों में कमी अन्याय और असमानता को कम करने का एकमात्र तरीका है। सशस्त्र हिंसा, संघर्ष और बीमारी वास्तव में एक ही चक्र से जुड़ी हुई हैं, जो शांति को बाधित करती हैं, मानव अधिकारों के उल्लंघन और विकास को बढ़ावा देती हैं। कार्डिनल टर्कसन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा हाल ही में एक वैश्विक युद्ध विराम की मंजूरी के साथ साथ 170 देशों द्वारा मौन हथियारों को संयुक्त राष्ट्र के आह्वान के अनुमोदन की सराहना की। उन्होंने कहा, संकट के समय में एकजुटता शांति का नया नाम है। दूसरी वक्ता सिस्टर अलेसांद्रा स्मेरेली ने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत किया जाना चाहिए और हथियारों का उत्पादन करने वाली कंपनियां इसमें सहायता कर सकती हैं। हमें संचारी रोगों की सुरक्षा की आवश्यकता है और हमें रोकथाम में निवेश करने की आवश्यकता है। कोविड-19 ने कई स्वास्थ्य प्रणाली संचारी रोगों के लिए उपचार के अपर्याप्त वित्त पोषण का खुलासा किया है। वे कहती हैं कि संत पापा फ्रांसिस ने हमसे रचनात्मक समाधान पूछा है, इसीलिए हम खुद से पूछते हैं, क्या होगा अगर हथियार बनाने की दौड़ की बजाय भोजन, स्वास्थ्य और कार्य सुरक्षा की दिशा में दौड़ लगाएं? इस समय नागरिकों को सैन्य मजबूत राज्य की जरूरत नहीं है, उन्हें ऐसे राज्य की जरूरत है जो सामान्य भलाई के लिए धन निवेश करे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।